हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज जो मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ ना, ये तब की है जब मेरी उम्र कभी 26-27 साल के आसपास की थी और मैं अपने पहले पति को छोड़ चुकी थी। हालांकि हमारा तलाक नहीं हुआ था और उस समय मेरी देसी जूत को लंड खाने की आदत पड़ चुकी थी। वैसे मेरी जूत ने लंड का स्वाद तो शादी के पहले ही चख लिया था, लेकिन देसी जूत की गर्मी के लिए जुदाई बहुत ज़रूरी हो चुकी थी। जुदाई ना हो पाने के कारण मैं बहुत दिनों से बेचैन थी। मैं अक्सर अपनी जूत को सहलाकर या किसी चीज़ को अंदर डालकर उसे शांत करने की कोशिश करती थी, लेकिन इससे संतुष्टि कहाँ मिलती है? जाहिर है, मेरी जूत लंड के लिए बेचैन थी और मैं भी कुतिया की तरह लंड ढूंढ रही थी। दोस्तों, आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। मैं वर्किंग गर्ल थी, इसलिए मैंने एक बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर ले लिया जो कि सबसे ऊपर के मंजिल पे था। काम से लौटने के बाद मैं ज़्यादातर टाइम ब्लू फिल्म देखने या घर में ही स्पेंड करती थी। मेरे फ्लैट की एक बालकनी बाजू वाले फ्लैट से बिल्कुल सटी हुई थी। ये बालकनी मैं कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करती थी या फिर रात को कभी-कभी वहाँ बैठकर सिगरेट पी लेती थी। काफ़ी दिनों से वो फ्लैट खाली था। एक दिन मुझे साथ वाली बालकनी में एक हम उम्र बहुत अच्छा आदमी दिखाई दिया। उसने मुझे बताया कि वो यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ है। मैंने उसे बताया कि मैं खुद भी नई ही हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमेशा वो आदमी मुझे बालकनी में दिख जाता था और उस आदमी को देखकर मेरी जूत पैंटी में से ही स्माइल करती थी। बहुत बार मैं उसे इमेजिन कर करके अपनी जूत सहलाती थी। अब देखो ना, पति से अलग रहने के कारण मेंटली इतना प्रेशर होता है ना कि मैं उस आदमी की तरफ अपने आप ही झुकना शुरू कर चुकी थी और मन ही मन उसके साथ सेक्स करने का मौका ढूंढ रही थी। मैं अपनी बालकनी में कपड़े सुखाया करती थी। एक दिन मेरा एक कपड़ा उड़कर बाजू वाले की बालकनी में जा गिर गया। अगले दिन उसने मुझे वो कुर्ता वापस कर दिया तो मैंने स्माइल करके उसे थैंक यू कहा। रात को अचानक मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया कि इससे जान पहचान बढ़ानी है और देसी जूत की गर्मी का इलाज भी तो करना है। तो मैंने अपनी एक सेक्सी सी ब्रा उसकी बालकनी में फेंक दी ताकि अगले दिन उससे वो वापस मांगूंगी। भाई, मेरा आइडिया तो काम कर गया। अगले दिन मैंने उससे पूछा, मेरा कोई कपड़ा आपकी बालकनी में आकर गिरा है क्या? तो उसने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और अंदर जाकर मेरी ब्रा ले आया। मैंने मुस्कुराते हुए, थोड़ा शर्माते हुए बालकनी से ही हाथ बढ़ाकर उससे अपनी ब्रा ले ली। अब इसके बाद तो अक्सर ही हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। धीरे धीरे हम दोनों में इंट्रोडक्शन भी हुआ। उसका नाम रोहित है और वो मैरिड है, लेकिन उसकी बीवी अभी गांव में माँ बाप के पास रहती थी। अब रोहित को इम्प्रेस करने के लिए मैं बालकनी में हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहनकर उससे बातें करती थी, जिससे मेरी शरीर और जांघों का अच्छा नज़ारा मिल जाए उसे। लेकिन मैंने अपने बारे में रोहित को ज़्यादा नहीं बताया था और मैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में ना किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन किसी कारण से शहर में बंद था और इसी वजह से हम लोगों की छुट्टी थी। अब मेरी प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन मेरे घर में गैस ख़त्म हो गई। अब मुझे खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा कि करूं तो क्या करूं? मैं बड़ी टेंशन में थी कि मुझे बालकनी में रोहित दिखाई दिया। इधर उधर की बातों के बाद रोहित ने पूछा, डॉली आप कुछ परेशान लग रही हो। जवाब में मैंने उसे अपनी परेशानी का कारण बताया तो वो हंसने लगा। कहता है, क्या डॉली जी, इतनी सी बात पे कोई परेशान होता है? हम पड़ोसी किस काम आएंगे? आपका नाश्ता, सुबह की चाय, लंच, सब कुछ आप मेरे साथ करो। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। भाई, उसके इनविटेशन से तो मेरी परेशानी दूर हो गई, लेकिन अंदर से मैं एक और बात से खुश हुई कि उससे जान पहचान बढ़ाने का मौका मिल रहा था। मैंने खुशी खुशी उसके इनविटेशन को मान लिया और कहा, ऐसे नहीं, एक दिन मैं भी आपको अपने घर खाने के लिए बुलाऊंगी और अभी आपके घर आकर आपका खाना बनाने में मदद करूंगी। ये बोलकर मैं रोहित के फ्लैट में चली गई। उस टाइम मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी। भाई, उसका घर तो बड़ा साफ सुथरा था। नाश्ता बनाकर हम दोनों बालकनी में ही बैठकर नाश्ता करने लगे। बातों बातों में उसने मुझे अपनी बीवी के बारे में बातें बताईं। फिर उसने मेरे पति के बारे में पूछा तो मुझे उसे बताना पड़ा कि मैं अपने पति से दूर रहती हूँ और हमारे बीच डिवोर्स का सब चल रहा है प्रोसेस। मेरी बात सुनकर उसने कहा, अरे यार, इन सब में तुम्हारा क्या दोष, तुम क्यों उदास होती हो? खैर, हम लोग फिर से इधर उधर की बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। बाद में रोहित के साथ मिलकर मैंने हम दोनों के लिए लंच बनाया। भाई, रोहित खाना तो बहुत अच्छा बनाता था। हम लोगों ने लंच को बहुत इन्जॉय किया। मैंने भी बदले में शनिवार के दिन रोहित को अपने घर डिनर पे इनवाइट किया, जिसे उसने मान लिया। दोस्तों, बहुत जल्दी शनिवार भी आ गया। क्योंकि मेरी छुट्टी थी तो मैंने घर को अच्छे से साफ किया और अपने शरीर को भी। पार्लर जाकर फेशियल, वैक्सिंग सब करवाया। अपनी चूत पे जो इक्का दुक्का बाल थे उसे भी हटाया और एकदम चिकना बनाया। भाई देखो, मैं तो चाहती थी कि रोहित को मैं पटा लूँ जिससे मेरा अकेलापन खत्म हो और मेरी चूत को लंड भी मिले। चूत को जब मैं साफ कर रही थी ना, तो अपनी चूत से बोली, मुनिया रानी, आज अगर किस्मत ने साथ दिया ना, तो तेरी भूख शांत करने के लिए शायद नया लंड मिल जाए। शाम को रोहित के आने से पहले मैं नहा धोकर एक हॉल्टर नेक बैकलेस ड्रेस पहन ली। ड्रेस की लंबाई मेरे घुटने से थोड़ा ही ऊपर थी और स्लीवलेस भी थी। पूरा मेकअप करने के बाद मैंने अपने आप को आईने में निहारा और मुझे लगा कि आज तो रोहित मेरे जाल में फंस ही जाएगा। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। रोहित को लगभग 8 बजे आना था, लेकिन वो आधा घंटा पहले आ गया। इससे मेरा ये विश्वास तो पक्का हो गया कि वो भी मुझ में इंटरेस्ट लेता है। रोहित अपने साथ चॉकलेट का पैकेट और एक बुके लेकर आया था। मैंने उसे थैंक यू बोला। उसने मुझे मुस्कुराकर ऊपर से नीचे तक देखा और तारीफ करते हुए बोला, भाई आज तो पूरी कयामत लग रही हो, किस पे बिजली गिराने का इरादा है? मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, बिजली की तो यही खासियत है कि वो जहाँ गिरेगी ऐसा किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता, लेकिन हाँ, जब वो गिरती है तो जलाकर खाक कर देती है। तुम ज़रूर ध्यान रखना, कहीं तुम पर ही ना गिर जाए। वैसे रोहित, मैं भी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों के पति नहीं होते वो भी बन संवर कर खुश रह सकती हैं। मेरी बात सुनकर रोहित ने मुझे समझाते हुए बोला, डॉली अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है तो इसमें उसकी किस्मत खराब है जो तुम्हारे जैसी अच्छी बीवी की कद्र नहीं कर पाता। वैसे तुम खुशनुमा मूड में बहुत हॉट लगती हो। मैंने फिर से उसे थैंक्स कहा और वो मेरे फ्लैट के अंदर आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके किचन में चली गई। रोहित मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया और खाने की खुशबू की तारीफ करते हुए बोला, लगता है आज बहुत कुछ तैयारी की है, खाने की तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है भाई, मुझे तो ज़ोरों से भूख लग रही है। दोस्तों आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। मैं खुलकर हंसने लगी और बोली, वैसे तो गंध मुझसे परफ्यूम की भी आ रही है, कहीं तुम मुझे भी मत खा जाना। ये बात सुनकर रोहित हंसने लगा। मैंने महसूस किया कि हम लोगों के आसपास के वातावरण जो थोड़ा सा बोझिल हो रहा था वो अब नॉर्मल हो गया। सूप के बाद हम दोनों ने रात का खाना खाया और इधर उधर की बातें की। मेरी जूत में से तो आग लग कर रही थी जो सिर्फ रोहित का लंड बुझा सकता था, लेकिन शुरुआत कैसे करूं ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक रोहित मुझसे बोला, डॉली अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तो मैंने भी हंसकर कहा, अरे यार अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा मान जाऊंगी तो मत पूछो, लेकिन हाँ यदि भरोसा है कि हम अच्छे दोस्त हैं तो ज़रूर पूछो। दोस्तों अब आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। बाय।